नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट। वक्त है जानने का खेल जगत की खबरें। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन शुक्रवार को हैमिल्टन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान 32वां टेस्ट शतक जड़ा। वो ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 32 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। विलियमसन ने 3 रन बनाकर पारी की शुरुआत की और 203 गेंदों में 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। विलियमसन ने 172वीं पारी में 32 शतक पूरा किए। स्टीवन स्मिथ ने इसके लिए 174 पारी लिए थे। रिकी पॉन्टिंग ने 176 और सचिन तेंदुलकर ने 179 पारी में 32वें शतक पूरे किए थे। दुनिया के नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज ने अब अपने पिछले 7 टेस्ट मैचों में 7 शतक जड़ दिए हैं। माउंट माउगानुई में सीरीज के पहले टेस्ट में 33 वर्षीय विलियमसन ने दोनों पारियों में शतक लगाए थे। किवी टीम ने अनुभवहीन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 281 रन की जीत दर्ज की थी। विलियमसन ने टेस्ट मैच की चौथी पारी में सर्वाधिक शतक के मामले में पाकिस्तान के बल्लेबाज यूनुस खान के शतक की भी बराबरी की। दोनों के 5 शतक हैं। इस पारी के साथ विलियमसन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6ठा शतक जड़ा। न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के जैक स्केलिस की बराबरी कर ली। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में तीसरे टेस्ट की शुरुआत से ठीक पहले जब दिग्गज अनिल कुंबले ने सरफराज खान को टेस्ट कैप सौंपी तो वो अपने आंसू नहीं रोक सके। वहीं उनकी पत्नी थी और वो भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। फिर वो अपने जीवन के सबसे प्रभावशाली शख्स अपने पिता नौशाद के पास दौड़े और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने एक बार इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि जब मैं अपने देश के लिए खेलूंगा तो पूरा दिन रोऊंगा। सरफराज ने डेब्यू मैच में 66 गेंद में 62 रन की बेहतरीन पारी खेली और रन आउट हुए। उन्होंने भारत को 5 विकेट पर 326 रन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। सरफराज ने अपनी पूरी पारी के दौरान साहस, संयम और इच्छा शक्ति का परिचय दिया। इससे पता चला कि वो टेस्ट स्तर के खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उनकी परीक्षा ली। पेस और सीम बॉलिंग, स्पिन और शानदार फील्डिंग, उनके पास हर सवाल का जवाब था। सरफराज ने भारतीय टीम तक पहुंचने के लिए खूब संघर्ष किया है। इसमें उनके अब्बू का योगदान बहुत बड़ा रहा है, जो आजमगढ़ से मुंबई आए और काफ़ी मुश्किलों का सामना किया। नौशाद अपने बेटे का डेब्यू देखने सौराष्ट्र नहीं आने वाले थे। सूर्य कुमार यादव के मनाने पर वो मैच देखने पहुंचे। सरफराज का सफर जुनून और दृढ़ता की बेहतरीन कहानी है। लगभग 15 वर्षों तक वो हर दिन 5 बजे उठते ताकि सुबह 6:30 बजे अभ्यास के लिए क्रॉस मैदान पर पहुंच सके। वो धूल भरी पिचों पर बल्लेबाजी कौशल को निखारने में घंटों बिताते। जब वो नहीं जाते थे तब भाई मुशीर के साथ विशेष क्रिकेट पिच पर अभ्यास करते थे। इसे नौशाद ने अपने घर के ठीक बाहर तैयार किया था। नौशाद थ्रो डाउन करने में घंटों बिताते थे। विपक्षी टीमों को दोस्ताना मैच खेलने के लिए पैसे देते थे। इसमें सरफराज पूरी पारी खेलते थे, भले ही टीम हारे या जीते। नौशाद और उनके बेटों का जीवन आसान नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पलायन करने के बाद नौशाद कभी ट्रेन में टॉफी और खीरे बेचते थे, ट्रैक पैंट भी बेचते थे। वो पश्चिमी रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। कमाई बहुत कम थी, इसीलिए वो ये काम करते थे। एक बार उन्होंने बताया था, हम झुग्गियों में रहते शौचालय के लिए लाइन में खड़े होते, जहां लोग मेरे बेटों को थप्पड़ मारकर आगे निकल जाते थे। हम कुछ लेकर नहीं आए और कुछ लेकर नहीं जाएंगे। सरफराज ने एक दिन मुझसे कहा, अब्बू तो क्या हुआ अगर भारत के लिए नहीं खेल पाया, हम वापस ट्रैक पैंट बेच लेंगे। सरफराज के दिमाग में वो सारी बातें घूम रही होंगी जब उन्होंने बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी के लिए करीब 4 घंटे इंतजार किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया, मैं 4 घंटे तक पैड पहनकर रहा, लेकिन मैंने खुद से कहा कि मैंने इतना धैर्य रखा है और ये धैर्य रखने के लिए समय है। जब बल्लेबाजी करने का समय आया तो उन्होंने कोई घबराहट नहीं दिखाई। ये पिता और पुत्र दोनों के लिए एक सपना सच होने जैसा था। सरफराज ने दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा, उनके सामने भारत के लिए खेलना मेरा सपना था। मेरे अब्बू पहले मैच देखने नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की और वो इस खास पल का गवाह बनने पहुंचे। मुझे लगता है कि अब मेरे कंधों से कुछ बोझ उतर गया है, क्योंकि मैंने अपने पिता के प्रयासों को बर्बाद नहीं होने दिया। बाद में पता चला कि सरफराज की मुंबई टीम के साथी सूर्य कुमार यादव ने उनके पिता को राजकोट जाने के लिए राजी किया। सरफराज की सुबह की शुरुआत अन्य दिनों की तरह दिलेर मेहंदी और प्रीतम द्वारा गाए गए फिल्म दंगल के टाइटल ट्रैक को सुनकर हुई। ये गाना संघर्ष और प्रेरणाओं की बात करता है और वो इससे अपने से जुड़ा महसूस करते हैं। मैदान पर भी सरफराज का संघर्ष जारी रहा। सरफराज को बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भी लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्हें दिसंबर 2022 में बांग्लादेश दौरे के लिए भारत की टीम में चुना गया था, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों के लौटने पर उन्हें बाहर कर दिया गया। ये बात चारों ओर फैल गई कि वो गति और उछाल से निपटने में सहज नहीं है। आईपीएल अच्छा ना रहने से दिक्कत और बढ़ी। कई बार ऐसा हुआ जब पिता और पुत्र दोनों मौका ना मिलने से निराश हुए, लेकिन शेर का शौक रखने वाले नौशाद अपने बेटे को सलाह देते थे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। उनकी एक और पसंदीदा लाइन है, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है, अगले बुलेटिन तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।